9 अक्टूबर जुमे के दिन का नमस्कार भारत कार्यक्रम फैसल मोहम्मद अली से। सीरिया में रूसी सैनिक कार्रवाई को लेकर रूस और नाटो गठबंधन में बढ़ी खींचतान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरी बीफ हत्याकांड पर तोड़ी चुप्पी। जानेंगे क्या है बीफ की राजनीति के पीछे। नहीं रुक रहा किसानों की खुदकुशियों का सिलसिला।
बाकी हो गया, बहुत बाकी हो गया। बोरा डाले, बोरा नहीं गिरे। हाँ, पानी नहीं गिरा। 8 दिन घर में सोए, फिर दवा पी के मर गया। उन्हें
सुनेंगे तेलंगाना से एक रिपोर्ट और एक बातचीत भारतीय चैंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह के साथ, जो कल रात अपना पहला प्रोफेशनल मैच खेलेंगे। सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का कहना है कि सीरिया को निशाना बनाकर कैस्पियन सागर से दागी गई 4 रूसी क्रूज मिसाइलें ईरान में गिरी हैं। रूस ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि उसकी सभी क्रूज मिसाइलें सीरिया में अपने निशानों पर लगी हैं। लेकिन एक ईरानी समाचार सेवा ने एक पश्चिमी शहर के गवर्नर के हवाले से बताया है कि कुछ नीची उड़ रही अज्ञात हवाई चीजें एक गांव में गिरी हैं। वाशिंगटन में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि सीरिया युद्ध में क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल ने अमरीका को परेशान कर दिया है। इसी बीच रूसी हवाई हमलों की मदद से सीरिया के सरकारी सैन्य बलों ने बड़ा जमीनी सैन्य अभियान शुरू किया है। ये अभियान रणनीतिक रूप से अहम गाब के मैदानी इलाकों में किया जा रहा है। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल पर बोलते हुए देश के सैन्य प्रमुख अली अब्दुल्लाह अयूब ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा, आज अरब सीरिया सैन्य बलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने और गांव और कस्बों को उनके कब्जे से छुड़ाने के लिए बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। इन गांव और कस्बों ने आतंकवाद के अपराधों और बर्बादी को झेला है। ये थे सीरिया के सेना प्रमुख अली अब्दुल्लाह अयूब के शब्द। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत ने देश में सरकार चला रहे 2 विपक्षी समूहों के बीच महीनों चली वार्ता के बाद राष्ट्रीय एकता सरकार के प्रस्तावों का ऐलान किया है। बर्नार्डिनो लियो ने मोरक्को में एक प्रेस वार्ता में ये ऐलान किया। 2011 में मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से हटाए जाने के बाद से देश में राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का माहौल है। इस ऐलान को राजनीतिक संकट के निपटारे की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। लीबिया में इस समय 2 सरकारें चल रही हैं, एक त्रिपोली में इस्लामी लड़ाकों के समर्थन से और दूसरी देश के पूर्वी क्षेत्र से, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। दोनों ही सरकारें अब ताज़ा प्रस्तावों पर मतदान करेंगी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज शांति के नोबेल पुरस्कार के विजेता का ऐलान किया जाएगा। नोबेल समिति 273 नामों पर चर्चा कर रही है, जिनमें प्रवासी संकट से निपटने में भूमिका निभाने वाली रूसी चांसलर अंगेला मेयरकल का नाम भी शामिल है। क्यूबा और अमेरिका के बीच फिर से संबंध स्थापित करने के प्रयासों के लिए पोप फ्रांसिस के नाम भी प्रस्तावित है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर फुटबॉल नियामक संस्था फीफा से 90 दिनों के लिए निलंबित किए गए 3 शीर्ष अधिकारियों ने खुद को बेगुनाह बताया है। अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने कहा है कि वे फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करेंगे। यूरोपीय फुटबॉल के प्रमुख माइकल प्लातिनी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि वे इनका मुकाबला करेंगे। यूएफए ने भी प्लातिनी में पूरा भरोसा जताते हुए कहा है कि वे इस दौरान अपना कार्यभार नहीं संभालेंगे। स्वास्थ्य मदद देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था मेडिसन सान फ्रंटियर ने कहा है कि कुंदूज में उसके अस्पताल पर हुए हमले के 5 दिनों बाद भी 33 लोग गायब हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा नमस्कार भारत में श्रोताओं का स्वागत है। रूस ने भी सीरिया में सैनिक कार्रवाई शुरू ही की है कि पश्चिमी देशों के गठबंधन नेटो ने इस पर अपनी चिंता जाहिर करनी शुरू कर दी है। वो इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रूस आईएस के बजाय उन गुटों को निशाना बना रहा है जो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ हैं। रूस ने 2 दिनों पहले कहा था कि उसने आईएस के ठिकानों पर 26 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि आज एक अनाम अमरीकी अधिकारी ने दावा किया कि उनमें से 4 मिसाइलें ईरान में गिरी हैं। रूस ने इस बात से इनकार किया है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुना रहे हैं दिलनवाज पाशा।
अमेरिका और रूस ने सीरिया में चल रहे अपने अलग अलग सैन्य अभियानों पर चर्चा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से फोन पर बात की है। रूस ने सीरियाई हवाई क्षेत्र में किसी घटना से कैसे बचा जाए और इस्लामिक स्टेट और उन अन्य समूहों जिन्हें रूस चरमपंथी संगठन मानता है से कैसे लड़ा जाए इसकी जरूरत पर जोर दिया। जॉन कैरी के प्रवक्ता ने बताया कि अमरीकी विदेश मंत्री ने रूस से कहा है कि उसके अधिकतर हवाई हमले इस्लामिक स्टेट के खिलाफ नहीं हैं। अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा,
the preponderance of targets that are being struck by Russian military forces that are not ISIL related.
विदेश मंत्री ने रूसी हवाई हमलों का निशाना बन रहे उन लक्ष्यों के बारे में अपनी चिंताएं जाहिर की हैं जो इस्लामिक स्टेट से संबंधित नहीं हैं। उन्होंने हवाई क्षेत्र में किसी दुर्घटना से बचने पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री ने सीरिया में राजनीतिक पथ पर आगे बढ़ने के महत्व पर भी चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि संकट का सैन्य समाधान मुमकिन नहीं है और इसका सिर्फ राजनीतिक समाधान ही हो सकता है। इसी बीच नेटो के रक्षा मंत्रियों ने सीरिया में रूस के दखल से पैदा हुए संकट पर ब्रसेल्स में चर्चा की है। नेटो ने सीरिया में रूस के बढ़ते दखल के मद्देनजर अपने सहयोगी देशों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। नेटो के प्रमुख येंस स्टेल्टेनबर्ग ने कहा है कि रूस के दखल से नेटो गठबंधन के लिए कई वजहों से खतरा पैदा हुआ है। उन्होंने कहा,
We see that the increased Russian presence in Syria is linked to the violation of Turkish NATO airspace.
हम देख रहे हैं कि रूस अपने कई सबसे उन्नत हथियारों का परीक्षण कर रहा है और सीरिया में बढ़ रही रूस की मौजूदगी तुर्की के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन से भी जुड़ी है। साथ ही उन्होंने सीरिया में अपनी उपस्थिति न सिर्फ जमीन पर बढ़ाई है बल्कि भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र में भी बढ़ाई है। ये सभी नेटो के लिए चुनौती है। यही वजह है कि हम अपनी सेनाओं की प्रतिक्रिया करने की क्षमता और तैयारी बढ़ा रहे हैं। वहीं दो अज्ञात अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि कैस्पियन सागर से दागे गए कुछ रूसी क्रूज मिसाइल ईरान पर गिरे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि कैस्पियन सागर से दागे गए सभी मिसाइल अपने निशानों पर लगे हैं। रूस ने बुधवार को कहा था कि उसने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाते हुए 26 क्रूज मिसाइल दागे हैं। वहीं ईरान की एक समाचार सेवा ने पश्चिमी शहर तकाब के गवर्नर के हवाले से कहा है कि नीची उड़ रही अज्ञात हवाई चीजें एक गांव में गिरी हैं। वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि सीरियाई युद्ध में क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। सीरिया युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी शामिल हैं। इसी बीच रूस के बढ़ते हवाई हमलों के सहयोग से सीरिया की सेना ने अपनी जमीनी कार्रवाई भी तेज कर दी है।
बशर अल-असद रूस के करीबी बताए जाते हैं। उधर आईएस के खिलाफ अमेरिका का अभियान पिछले कुछ दिनों से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक रैली में एक ऐसा बयान दिया है जिसे दादरी की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी ने कहा कि लोगों को नेताओं की बयानबाजी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें राष्ट्रपति ने जो संदेश दिया है उसे सुनना चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कहा कि दादरी हत्या मामले में एक संगठन से जुड़े 3 लोगों का हाथ है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम से साजिश रचने वालों के नाम उजागर करने को कहा है। एक रिपोर्ट के साथ संदीप राय।
बिहार के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवादा की रैली में विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को नेताओं के ऊट पटांग बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
भारत के सबसे बड़ा मुखिया राष्ट्रपति जी ने जो कहा है उससे बड़ा कोई विचार नहीं हो सकता, उससे बड़ी कोई दिशा नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि राजनीति का स्वार्थ सीधा करने के तरीके बंद होने चाहिए।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को कहा था कि हमने हमेशा विविधता को स्वीकार किया है, सहनशीलता और अखंडता की वकालत की है। माना जा रहा है कि मोदी ने यह बयान उत्तर प्रदेश के दादरी में गौमांस खाने की अफवाह में हुई अखलाक अहमद की हत्या को लेकर दिया है। इस घटना को लेकर मोदी की चुप्पी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। दूसरी तरफ गुरुवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने भी दादरी मामले पर बयान दिया।
जो ये दादरी या बसारा गांव की समस्या है ये बहुत जानबूझ की साजिश है। नाम तो आप जान ही जाएंगे लेकिन मैन जो हमने अभी तक पता लगाया है एक विशेष है, सरताजा दल कहिए से जुड़े 3 लोग मुख्य हैं।
मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि पढ़े लिखे नौजवान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम के दावों पर सवाल उठाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि अगर मुलायम को साजिश करने वालों के नाम की जानकारी है तो उसे उजागर करें।
मैं समझता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दी है उनकी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी साजिश थी या साजिश है, उनके लिए इंटेलिजेंस रखना, उस साजिश का पहले भापना भी उनकी जिम्मेदारी थी। और अगर वो इसमें फेल हो गए हैं कि साजिश को पहले नहीं झांप पाए, अब अगर उन्हें पता चला है 9 दिन बाद घटना के बाद, तो कृपया बताएं।
दादरी के मामले को एक तरह से हर पार्टी सबक के तौर पर लेने को कह रही है, वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल पर निशाना साधने का कोई मौका भी नहीं गंवा रही है। संदीप राय, बीबीसी दिल्ली।
जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक बीफ यानी कि गौमांस की राजनीति एक तरह से केंद्रीय मुद्दा बन गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तो इस मामले पर मारपीट तक हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव की बहस भी बीफ के मुद्दे के इर्द गिर्द सिमट गई लगती है। इसे लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह से बात की और पूछा कि मौजूदा दौर में जब कई और अहम सवाल हैं, तब बीफ की राजनीति के अचानक सबसे अहम मुद्दा बनने की क्या वजह है?
अगर आप देखें तो यह अचानक जरूर है, लेकिन पिछले अगर आप एक दशक से देखिएगा पूरा, तो एक तरह से ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जो बारूद होती है वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज वो बारूद बिछाती जा रही, तो ये अचानक हुआ जरूर है, लेकिन जो विषाक्त वातावरण फैलाया गया वो अचानक नहीं।
जहां चुनाव फिलहाल नहीं भी है, जैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में, वहां भी बीफ का मुद्दा इतना संवेदनशील हो गया कि एक विधायक की पिटाई इस मामले पर हो जाती है, इसे आप कैसे देखते?
समाज तो जुड़ा हुआ होता है ना, आप जब एक इलाके को केंद्रित करके कहीं से कोई राजनीति शुरू हो रही है, आप देखिए कि काऊ बेल्ट का यह हिस्सा उत्तर प्रदेश बिहार, ये आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले हैं, तमाम तरह का ये प्रयोग यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी घटना हो गई तो जैसे आग जो होती है ना, जहाँ जो लगाया जाता है, लेकिन जो फैलती है तो पूरे अड़ोसी पड़ोसी को भी ले जाती है। ये राजनीति का माहौल आप देखते जाइए, अभी बिहार में चुनाव है, फिर बंगाल में है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। मैं बता दूं, मैं 74 से इस राजनीति को देख रहा हूं, कभी भी जब मुद्दे उठाए जाते हैं, हमेशा जेपी ने उठाया था जनेऊ तोड़ो दाम बांधो संपूर्ण क्रांति का, नतीजा क्या हुआ आप उसके बाद से 74 के बाद से देख लीजिए, वो मुद्दे कहीं नहीं रहे।
बिहार में बात जो शुरू हुई थी विकास के मुद्दे से शुरू हुई थी, लेकिन अब वहाँ भी केवल बीफ पर आकर बात रुक गई है।
इसका भी एक सीक्वेंस देखते जाइए, सबसे पहले वहाँ विकास से बात शुरू होती है, फिर वो विकास को हल्का सा डाइल्यूट किया जाता है, फिर आ जाती है जाति अस्मिता, क्षेत्रीय अस्मिता, और फिर चुपके से धार्मिक अस्मिता आ जाती है। फिर अंत में क्या होता है, उनको सबको पता है कि विकास पर कहने के लिए दोनों पक्षों में से किसी को कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, कोई न कोई केंद्र में रहा है, कोई राज्य में रहा है, दोनों के लिए आसान है कि क्योंकि विकास के मुद्दे बड़े वो कुछ इस तरह से होते हैं कि आपको नंगा करते हैं, हमेशा भाषाई मुद्दे, धार्मिक मुद्दे इस तरह उठाए जाते हैं कि क्योंकि इसमें तात्कालिक रिएक्शन होता है, तात्कालिक आक्रोश होता है, और आक्रोश जैसा आप जानते हो कि क्या हालत होती है कि वो उसको निरर्थकता उसकी साबित होने में वक्त लगता है, तब तक वोट पड़ चुके होते हैं, फैसला हो चुका होता है।
जी, आप इस तरह की राजनीति के कोई खतरे देखते हैं? अगर वो खतरे हैं तो किस तरह के खतरे हैं?
मैं खतरे तो हैं राजनीति के, लेकिन ये सारी पार्टियां चूंकि देखिए कोई विकल्प नहीं होता, आप इसका फायदा ये उठाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का ताना बाना ये इतनी बार आजमाया जा चुका है, वो भाईचारा टूटेगा नहीं।
ये थे राम कृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार।
दुनिया की बड़ी खबरें बीबीसी के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए टीवी पर बीबीसी दुनिया, ईटीवी नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, ये है बीबीसी दुनिया, मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं,
उससे बात करने में बहुत मजा आता है,
तो देखना मत भूलिए बीबीसी दुनिया शाम 9:20 पर ईटीवी के साथ साथ bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी। बीबीसी दुनिया।
मुझे लगता है कि श्रोताओं को स्टूडियो का एक नज़ारा देखना चाहिए था। दिलनवाज पाशा स्टूडियो में बैठे हुए हैं माइक के सामने, कम से कम 10-20 अखबार उनके सामने पड़े हुए हैं। दिलनवाज साहब, क्या कह रहे हैं अखबार?
जी, आज के अखबारों ने सुर्खी बनाया है कल प्रधानमंत्री के उस बयान को जो उन्होंने बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान दिया था। इस बयान में उन्होंने हिंदू और मुसलमानों से एकता की बात की थी, इसे दादरी के में जो हत्याकांड हुआ उससे जोड़ते हुए अखबारों ने लिखा। हिंदुस्तान लिखता है मोदी मुलायम ने चुप्पी तोड़ी, वहीं कल मुलायम सिंह ने भी एक बयान दिया था और कहा था कि तीन लोगों की पहचान हुई है जिनकी जो दादरी की साजिश में शामिल हो सकते हैं, और इसे सुर्खी बनाया है जनसत्ता ने। लिखता है अखबार, हर हाल में होगी दादरी के दोषियों पर कार्रवाई। मुलायम, नई दुनिया ने मध्य प्रदेश गए आजम खां के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में हिंदू व जैन ही चलाते हैं 90% कत्लखाने। ये भी बीफ पर जो राजनीति देश में हो रही है उसी का एक हिस्सा है। और जिक्र करूंगा द स्टेट्समैन की एक खास खबर का जिसके मुताबिक बनारस में जिस गांव को नरेंद्र मोदी ने गोद लिया है वहां बनाई गई सड़कें टूट रही हैं, और ये विशेष रिपोर्ट में जिक्र है।
मतलब एक गांव जो एडॉप्ट करने का प्रधानमंत्री का योजना
जी जी जयपुरा, इसका मीडिया में काफी प्रचार भी हुआ था, पत्रकार देश भर के वहां गए थे, रिपोर्टें आई थी, और अब ये वहां की हकीकत छापी है द स्टेट्समैन ने। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर में एक दलित परिवार डर से जी रहा है। वजह यह है कि उस घर के एक छात्र ने, जो ऊंची जाति के छात्र हैं, उनकी खाने की प्लेट को छू लिया था, और अब इस परिवार को डर है कि कहीं इनके खिलाफ कोई सामाजिक कार्रवाई न की जाए
प्लेट छूने भर से।
जी जी जी। और अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक यादव सिंह जो चर्चित इंजीनियर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी 12 उनकी कंपनियों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं, 12 जगह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। कल भारतीय वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया, और इससे जुड़ी यह खबर आई कि अब भारत की वायुसेना में महिलाएं भी विमान उड़ा सकेंगी, और इसी खबर को अलग अलग अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण लिखता है बेटियां उड़ाएंगी लड़ाकू विमान, और दिल्ली में स्वाइन फ्लू से पहली मौत हुई है ये बता रहा है आज का हिंदुस्तान अखबार। उत्तर प्रदेश के एक शख्स की सफदरजंग अस्पताल में परसों मौत हो गई थी।
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज बादशाह अखबार की समीक्षा के लिए, और अब देखते हैं कि आज किन किन खबरों पर रहेगी हमारी नज़र।
शांति के नोबेल पुरस्कार का ऐलान आज ओस्लो में किया जाएगा। जर्मन चांसलर अंगेला मेर्कल और अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। पिछले साल ये पुरस्कार भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की छात्रा मलाला यूसुफ जई को संयुक्त रूप से दिया गया था। सीरियाई सैन्य बलों ने विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी जमीनी कार्रवाई शुरू की है। सीरियाई गृह युद्ध में रूस के दखल के बाद नेटो ने भी बैठक की और आगे की रणनीति पर विचार किया। सीरिया में रूस के दखल के बाद संघर्ष ने सीरिया के हालातों और रूस के हवाई अभियानों पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव और बढ़ रहा है। चाकू हमलों में कई इजरायली नागरिक घायल हुए हैं और फलस्तीनी हमलावर मारे गए हैं। इजरायली सुरक्षा बलों और फलस्तीनियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई हैं। यरूशलम और पश्चिमी तट के हालातों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पिछले सप्ताह ओरेगॉन के एक कॉलेज में हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से आज मुलाकात करेंगे, इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। और फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने अध्यक्ष से ब्लैटर और उनके संभावित उत्तराधिकारी माइकल प्लातिनी को निलंबित कर दिया है। फीफा की गतिविधियों पर भी हमारी नजरें आज बनी रहेंगी।
देश के कुछ जाने माने लोगों ने एक संवेदना यात्रा निकाली है जो पूरे देश का भ्रमण कर रही है, खासतौर पर उन इलाकों पर जा रही है जहां किसान जो हैं बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो संवेदना यात्रा के साथ बीबीसी ने तेलंगाना के मेडक ज़िले के गांव मकराजपेटा का जायज़ा लिया। इस गांव में महिलाओं और बच्चों के साथ नज़र आता है उनका कभी न ख़त्म होने वाला गम। क्या है इसकी वजह, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता अजय शर्मा अपनी इस रिपोर्ट में।
मकराजपेटा में अब सिर्फ औरतें और बच्चे ही रोते हैं। ये रुदन इतना खामोशी से होता है कि शायद ही आप सुन पाएं। औरतें रोती हैं अपने मर्दों के लिए और अपने बच्चों के लिए। बच्चे रोते हैं अपने उन पिताओं के लिए जो गायब हैं। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए। जब मैं तेलंगाना के मेडक ज़िले के गाँव मकराजपेटा पहुँचा तो अंधेरा होने को था। बड़ी तादाद में महिलाएँ गाँव के एक स्कूल के बाहर चौपाल पर थीं। ज़्यादातर वो खामोश थीं और उनके साथ मौजूद बुजुर्ग अपने उन बेटों और दामादों की बात बताने को बेताब थे जिन्होंने या तो पिछले कुछ बरसों में जान दे दी है या जो गांव छोड़कर कहीं गुम हो गए हैं। सूखा यहां पहाड़ की तरह टूटा है। लक्ष्मी की उम्र मुश्किल से 20-22 साल है, गोद में बच्ची है और वो विधवा हो चुकी है। वो बताती है कि पिछले साल की तरह इस साल भी जब पानी नहीं गिरा तो उसके पति ने गाँव के एक साहूकार से पानी और बीज के लिए कर्ज उठा लिया। ये कर्ज 2 साल में 1,20,000 रुपये पर पहुँच गया, मगर सूखी ज़मीन सब कुछ लील गई। पति ने मजदूरी की कोशिश की मगर नहीं मिली, क्योंकि गांव में दूसरे किसानों की ज्वार की तकरीबन पूरी खेती खराब हो चुकी है।
पानी
बाकी हो गया, बहुत बाकी हो गया, बोरा डाले बोरा नहीं गिरे,
अब
हाँ पानी नहीं गिरा, 8 दिन घर में सोए, फिर दवा पी के पीकर से मत गया, मर गए।
लक्ष्मी से जब मैं बात कर रहा था तो पीछे खड़ी 3 बेटियों और 1 बेटे की माँ पद्मा चुपचाप रो रही थीं। पूछने पर पता चला कि उनके पति ने खुद को पेड़ से लटका लिया था और मर गए। पद्मा के पति ने 5% पर कर्ज उठाया था। यहाँ सबका कर्ज है जो लोगों ने 4-5% पर उठाया है। जिनसे हमने कर्ज लिया है वो इस गांव में नहीं रहते। जिन्होंने पैसा दिया उनका नाम क्यों लेना, उन्हें क्यों बदनाम करना? वो हमें परेशान नहीं करते, हम ही खुद परेशान हैं। औरतों और बच्चों की इस भीड़ में खड़ी नपेर विजय का पति 8 साल पहले घर से भागा था। उसे पता नहीं कि वो कहाँ है, जिंदा है या मर गया है।
शराबी था और पीने की इतनी ज्यादा उसको लत थी कि उसको अपने बच्चों का बीवी का भी ख्याल नहीं था। बीमार हो गया और एक दिन जो है परेशान होके पूरी जिम्मेदारियों को छोड़ के गाँव छोड़ के 8 साल पहले भाग गया। अब तक उसका पता नहीं है जिंदा है या मर गया, किसी को मालूम नहीं है, कोई इसका कॉन्टैक्ट नहीं है।
अधेड़ उम्र की महिला बालमणि की कहानी भी अलग नहीं थी। ये कहानी सूखे खेत और सूखी जमीन की ही नहीं, सूखे हुए घर और सूखी हुई आस की भी है। उनकी बेटी की शादी ने कर्ज इतना बढ़ाया कि घर का मुखिया हताशा में एक दिन बगैर बताए कहीं चला गया और फिर उसके मरने की खबर आई। गांव के लोगों से बालमणि को इसका पता चला।
ये मैं सच पेन आती है मैं बिड्डे लागन जैसन सर हां मैं बिड्डे लागन जैसन
हां ले चल जैसन
शेषी अप्लाई नहीं यानी सिटी दिख वैन हां ये आकड़े गुड़ा पानलो दरकले
मैरिज जो हुई मैरिज में बहुत बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। खर्चा होने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया, परेशान भी हो गया। कर्जा लोकल लोगों से हो गया, गांव के लोगों से। कुछ लोग मांगने लगे, कुछ प्रेशराइज करने के लिए, कुछ पूछने लगे। उस वक्त उनको जो है ज़्यादा तकलीफ़ होने की वजह से 1 हफ्ता पहले 4-8 दिन पहले वो गांव छोड़कर चला गया। लेकिन गांव छोड़कर जाने के बाद यहाँ के लोगों ने कभी तक कंप्लेन भी नहीं किया, पुलिस कंप्लेन, और इनको पता भी नहीं कि वो वहाँ है या नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है।
स्वराज अभियान के तेलंगाना कार्यकर्ता आदिल मोहम्मद के मुताबिक जिसने सूद पर पैसा दिया अब वो सामने नहीं आता, मगर कर्ज खड़ा है और साथ खड़ी है ब्याज। ब्याज दर इतनी है कि अच्छे से अच्छा कमाने वाला उद्योगपति भी नहीं भर सकता। अब गांव में कर्ज के सिवा कुछ दिखता है तो वो हैं औरतें और बच्चे। अजय शर्मा, BBC, मकराजपेटा, जिला मेडक, तेलंगाना।
और अब सुनते हैं आज की वॉशिंगटन डायरी।
आइए आज आपको बिल्कुल ओरिजिनल सी एक कहानी सुनाता हूँ। दो भाई होते हैं, एक बीड़ी सिगरेट शराब पीता है, स्मगलिंग करता है, और दूसरा ईमानदार है, शरीफ है और पुलिस इंस्पेक्टर है। एक के पास बंगला है, गाड़ी है, ऐशो आराम की हर चीज है, दूसरे के पास बस धांसू सी पंचलाइन है, यानी उसके पास माँ है। लेकिन इस धांसू सी लाइन के बावजूद कहानी का हीरो कौन है, अब ये भी बताना पड़ेगा। दीवार फिल्म नहीं देखी क्या? वैसे इस फिल्म का नाम दीवार नहीं माँ का प्यार टाइप कुछ होना चाहिए था, क्योंकि अंदर की कहानी यही थी कि माँ किसको ज्यादा प्यार करती है। अरे माफ कीजिएगा, मैंने आपसे कहा था ओरिजिनल स्टोरी है। दरअसल इस कहानी से इंस्पायर होकर एक ओरिजिनल कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। चलिए फिर से कोशिश करते हैं। ये कहानी अमेरिका की है। दो भाई होते हैं, एक बिगड़ैल था, जवानी में गंजेड़ी और शराबी था। जब वो लत छूटी तो इराकबाजी का शौक लग गया। उसके पास बंगला, गाड़ी, एयरफोर्स वन और व्हाइट हाउस की चाबी भी थी। दूसरा हमेशा से शरीफ था और उसके पास माँ और बाप दोनों थे। और अगर आपने दीवार देखी है तो जाहिर है आप भी समझ गए होंगे कि हीरो कौन है। लेकिन कहानी का ओरिजिनल ट्विस्ट ये है कि अब शरीफ भाई को बिगड़ैल भाई की जरूरत आन पड़ी है। माँ बाप की नजर में भी बिगड़ैल भाई अब ज्यादा कामयाब और लायक नजर आ रहा है। और माँ ने तो एक टीवी चैनल पर हंसते हुए सही अपने शरीफ बेटे से कह दिया, मैंने कब कहा कि मैं तुझसे ज्यादा प्यार करती हूँ। इसे कहते हैं कि बुरा वक्त आता है तो माँ की नजरें भी बदल जाती हैं। और हाँ, इंटरवल होने को आया और मैंने किरदारों के नाम तो बताया ही नहीं, तो एक का नाम है जेब बुश और दूसरे का नाम है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जेब बुश को देखकर आपको याद आएंगे वो देसी शादियों वाले बिल्कुल शरीफ से मामा जी, जो बगल में रेक्सीन का बैग दबाए घूमते रहते हैं और कभी पंडित तो कभी बरातियों के नखरे झेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर आपको अपनी क्लास का हमेशा फर्स्ट बेंच पर बैठने वाला वो बच्चा भी याद आएगा, जो हर सवाल के जवाब के लिए हाथ खड़े करता था और मास्टर जी का चहेता होता था। जॉर्ज बुश को देखकर आपको जो कुछ भी याद आए उसे अपने मन में रखें। वैसे भी उनके किस्से आपने 8 साल तक सुने हैं और अब तक सुन रहे हैं। तो खैर, जेब बुश इस बार एक लायक बेटे होने का फर्ज अदा करते हुए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में है, ये तो आपको मालूम ही है। मुश्किल ये है कि उनकी रेटिंग इतनी खराब है कि जॉर्ज बुश की रेटिंग 8 सालों की इराकबाजी के बाद भी इससे बेहतर थी। शुरू में विद्वानों की राय थी कि जेब बुश को जॉर्ज बुश की हरकतों का खामियाजा भुगतना होगा और उन्हें खुद को उनसे दूर रखने की कोशिश करनी होगी, लेकिन वही सलाहकार अब कह रहे हैं कि जेब बुश के सुस्त और ढीले पड़ रहे कैंपेन के लिए शायद जॉर्ज बुश नीली गोली का काम कर सकते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स होंगे लेकिन तब की तब देखी जाएगी। और खबर ये आ रही है कि जेब ने फोन करके कहा है, भाई आज मुझे तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है, माँ भी यही चाहती है। ठीक है, ये माँ वाली लाइन मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी है, इतना तो चलता है। और जॉर्ज बुश का भी कहीं पर बयान दिखा है कि उन्होंने जेब बुश से कहा है, रन जेब रन। हिंदी उर्दू में इस लाइन को दो तरह से पढ़ा जा सकता है, यानी दौड़ो जेब दौड़ो, लेकिन जेब बुश साहब मेरी माने तो इसे कुछ यूं पढ़ें, भाग जेब भाग, जो भी बची खुची इज्जत है उसे लेकर भाग, वरना कहीं का नहीं रहेगा। ब्रजेश उपाध्याय, BBC वॉशिंगटन।
और अब खेल समाचार। बीजिंग ओलंपिक में मेडल जीतने वाले विजेंद्र सिंह भारतीय बॉक्सिंग के स्टार हैं। 29 साल में के विजेंद्र ने अब प्रोफेशनल बॉक्सर बनने का फैसला किया है। वो इंग्लैंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनकी पहली फाइट कल यानी कि 10 अक्टूबर को मैनचेस्टर में है। इसे लेकर क्या है विजेंद्र की उम्मीदें, जानते हैं एक रिपोर्ट में जिसे तैयार किया है निकेश रुगानी ने और पेश कर रहे हैं वात्सल राय।
मैनचेस्टर की रिंग में पसीना बहाते भारत के स्टार बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ये दिल्ली की 5 सितारा सुविधाओं वाली जिम से अलग है। सामने 6 हैवी पंच बैग हैं, मैट पसीने से भीगी है और दूर एक रिंग है। कड़े अभ्यास में जुटे विजेंद्र बताते हैं कि उन्होंने नए रिंग में हाथ आजमाने का फैसला क्यों किया।
दैट्स नॉट अ इजी थिंग कि एकदम सडनली हो जाता है। जब मैं आया था यहाँ पे तो मैं सिर्फ ट्रेनिंग सेटअप देखना चाहता था, बिकॉज मैं 3 ओलंपिक खेल चुका हूँ, मैं सब मेडल जीत चुका हूँ अमेचर में। इंडिया से प्रो ट्राई किया था कई बॉक्सरों ने, इतना अच्छा नहीं कर पाए, बट मैं भी कोशिश कर रहा हूँ प्रो बॉक्सिंग करने की, तो देखते हैं कहाँ तक लेके चलती है जर्नी।
विजेंद्र भारत में बॉक्सिंग के सबसे बड़े स्टारों में एक है। वो बॉलीवुड में भी पारी शुरू कर चुके हैं। उन्हें पसंद करने वाले फैंस की बड़ी संख्या है। चाहने वालों के दबाव को लेकर विजेंद्र सिंह कहते हैं,
जस्ट कीप काम एंड जस्ट डू योर ट्रेनिंग, आई कैन से दैट, और थैंक्स टू देम बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्ट मी एंड दे ऑलवेज से समथिंग अबाउट मी, और कुछ भी कहते रहते हैं अच्छी बात है मेरे लिए। मेरे लिए एक पुश मिलता है आगे जाने के लिए और मेहनत करने के लिए, लोगों का मुंह बंद करने के लिए।
अपनी पहली फाइट के लिए विजेंद्र जबरदस्त तैयारी में जुटे हैं। उन्हें मैनचेस्टर में जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है, इसे लेकर उनका जोश और उत्साह बढ़ गया है। वो कहते हैं,
फर्स्ट फाइट है मेरी जो 10 अक्टूबर को होगी और मैनचेस्टर में होगी, बहुत बड़ा अरीना है यहाँ पे और बहुत मजा आएगा, और लॉट्स ऑफ जो इंडियन कम्युनिटी है, जो एशियन कम्युनिटी है, वो बहुत सपोर्ट कर रही है मेरे को और फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, एंड मजा आएगा उसमें। और मेरा पहला फाइट है, इट्स गोना बी अमेजिंग, और चकदे फटे।
बॉक्सिंग रिंग में कई इतिहास रच चुके विजेंद्र को उम्मीद है कि इस बार उनके दमदार पंच कामयाबी की नई कहानी की शुरुआत करेंगे।
और अब ये बता दीजिए दिलनवाज की भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच भी 2020 मैच का क्या हुआ।
जी, कल ईडेन गार्डन्स में तीसरा और अंतिम मैच था। भारत को उम्मीद थी कि वो धर्मशाला और कटक में हारकर सीरीज गंवाने के बाद कम से कम ईडेन गार्डन्स में इज्जत तो बचा लेंगे, लेकिन भारी बारिश ने भारत के इन मंसूबों पर भी पानी फेर दिया। 3 बार मैदान का मुआयना हुआ और अंततः फैसला ये हुआ कि मैच रद्द कर दिया जाए। इसी के साथ भारत न सिर्फ सीरीज हारा बल्कि उसने अपनी T20 रैंकिंग में भी 2 पायदान की गिरावट देखी। पहले सीरीज शुरू होने से पहले भारत 4थे और दक्षिण अफ्रीका 6ठे स्थान पर था, अब भारत 6ठे और दक्षिण अफ्रीका 5वें स्थान पर है।
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा, और एक बार फिर से सुनते हैं दिलनवाज पाशा से ही विश्व समाचार।
रूस ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें अमरीकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि सीरिया को निशाना बनाकर कैस्पियन सागर से दागी गई 4 रूसी क्रूज मिसाइलें ईरान में गिरी हैं। रूसी हवाई हमलों की मदद से सीरिया के सरकारी सैन्य बलों ने बड़ा जमीनी सैन्य अभियान शुरू किया है। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत ने देश में सरकार चला रहे 2 विपक्षी समूहों के बीच महीनों चली वार्ता के बाद राष्ट्रीय एकता सरकार के प्रस्तावों का ऐलान किया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज शांति के नोबेल पुरस्कार के विजेता का ऐलान किया जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोपों पर फुटबॉल नियामक संस्था फीफा से 90 दिनों के लिए निलंबित किए गए 3 शीर्ष अधिकारियों ने खुद को बेगुनाह बताया है। स्वास्थ्य मदद देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्था मेडिसिन सान फ्रंटियर ने कहा है कि कुंदूज में उसके अस्पताल पर हुए हमले के 5 दिन बाद भी 33 लोग लापता हैं। बीबीसी समाचार।
कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था अजीत सारथी ने। फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। 1 घंटे के बाद फिर से होगी मुलाकात।